ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सभी आतंकियों की पहचान कर उन्हें सख्त सजा देगा। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने पंचायती राज दिवस पर आज अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का किया वर्चुअल शुभारंभ। मोर गांव मोर पानी महाअभियान की भी शुरुआत की। बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में कई माओवादियों के मारे जाने की खबर। 3 महिला माओवादियों के शव बरामद। और बिलासपुर दुर्ग और रायपुर संभाग में अगले 48 घंटों के दौरान ग्रीष्म लहर चलने की संभावना। बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर आतंकवादी और उसे सहायता देने वालों की पहचान करके उनका पता लगाएगा और पहलगाम हमले के दोषियों को दंडित करेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा और भारत दुनिया के किसी भी कोने से अपराधियों को ढूंढ निकालेगा। श्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद से देश की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और पूरा देश इस संकल्प पर अडिग है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत के साथ खड़ा है।
इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहाँ बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है।
श्री मोदी ने भारत के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए विश्व और वैश्विक नेताओं को धन्यवाद दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 2 दिन पहले हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले छत्तीसगढ़ के दिवंगत कारोबारी दिनेश मिरानिया का आज रायपुर में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले राज्यपाल रमेन डेका ने आज सुबह श्री मिरानिया के घर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री मिरानिया के अंतिम संस्कार में शामिल होकर पार्थिव शरीर को कंधा दिया। उन्होंने दिवंगत दिनेश मिरानिया के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों की इस कायराना हरकत ने देश की आत्मा पर चोट किया है। आतंकवादियों ने पर्यटकों के जरिए कश्मीर और देश को अस्थिर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि देश एकजुटता के साथ इस अमानवीय कृत्य का बदला लेगा। इस बीच भाजपा की प्रदेश इकाई ने भी आतंकी हमले में दिवंगत दिनेश मिरानिया के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि मानवता को शर्मसार करने वाले आतंकियों द्वारा पर्यटकों पर किया गया हमला निंदनीय है। पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ है, एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज रायपुर से अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश की 11,693 ग्राम पंचायतों में मोर गांव मोर पानी महाअभियान की भी शुरुआत की गई। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों और नागरिकों से जल संरक्षण का आह्वान करते हुए उन्हें शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से प्रदेश के 1,460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र की शुरुआत हुई है और आने वाले समय में इसका विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के शुरू होने से ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति आएगी और प्रदेश की सरकारी सेवाओं तथा योजनाओं की पहुंच आम लोगों तक आसानी से पहुंच सकेगी। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ग्रामीणों को बैंक शाखाओं तक जाना न पड़े। आज मोदी की इस गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के हितग्राहियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद भी किया। पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज विश्व टीकाकरण सप्ताह के पहले दिन नई दिल्ली में वर्ष 2025-26 के लिए खसरा रूबेला का पूरी तरह उन्मूलन करने के अभियान की शुरुआत की। इस अभियान से वर्ष 2026 तक खसरा और रूबेला का देश में पूरी तरह उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर श्री नड्डा ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से टीकाकरण अभियान की जानकारी देने के लिए बैठकें आयोजित करने को कहा है। उन्होंने राज्यों से खसरा और रूबेला से बचाव के टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सभी विधायकों, सांसदों, स्थानीय निकायों और पंचायत प्रमुखों की भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल रमन डेका ने आज बलरामपुर रामानुजगंज जिले में विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्रियों का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वच्छग्राही दीदियों को सम्मानित भी किया। इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न महिला स्व सहायता समूहों को चक्रीय निधि और बैंक लिंकेज द्वारा लगभग 69 लाख रूपये का चेक प्रदान किया। वहीं प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत एक हितग्राही को आवास की चाबी भी सौंपी गई। इसके अलावा राज्यपाल ने जशपुर जिले के दौरान जिला पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 35 हितग्राहियों को सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों से चर्चा की और टीबी मरीजों की सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का सम्मान भी किया। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में कई माओवादियों के मारे जाने की खबर है। इनमें से 3 महिला माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिनकी पहचान PLGA बटालियन नंबर 1 के सदस्य के रूप में हुई है। घटनास्थल की सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने हथियार और विस्फोटक के साथ अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी ने बताया कि बीजापुर जिले के दक्षिण पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र के अंतर्गत अंतर्राज्यीय सीमा के जंगल में माओवादियों के संगठन के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति की सूचना मिलने पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG, बस्तर फाइटर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, कोबरा बटालियन और स्पेशल टास्क फोर्स STF की संयुक्त टीम रवाना हुई। सुरक्षा बलों ने पहाड़ी को घेर लिया है और ऑपरेशन जारी है। वहीं ड्रोन के जरिए ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से मिले निशान से और भी माओवादियों के मारे जाने की संभावना जताई है। इस बीच कबीरधाम जिले में आज 7 लाख रुपए के इनामी माओवादी दंपति ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आत्मसमर्पित पुरुष माओवादी GRB डिवीजन कमेटी में प्लाटून नंबर 1 और उसकी पत्नी टांडा एरिया कमेटी में सदस्य के रूप में सक्रिय थी। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी दंपति को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP ने माओवाद विरोधी माड़ बचाव अभियान के तहत नारायणपुर जिले के सीमावर्ती ग्राम निलांगुर में नया कैंप स्थापित किया है। ITBP के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष अब तक ITBP ने अबूझमाड़ क्षेत्र में 5 नए कैंप स्थापित किए हैं। इनमें महाराष्ट्र सीमा से लगे निलांगुर भी शामिल है। इस कैंप के स्थापित होने से दुर्गम और घने जंगलों में सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाने में मदद मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन आज मुंबई में आयोजित इंडिया स्टील सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ को इस्पात उत्पादन और औद्योगिक निवेश के लिए तेजी से उभरता हुआ राज्य बताया। श्री देवांगन ने इस्पात क्षेत्र में राज्य सरकार की नीति, पारदर्शिता और प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दी और देश विदेश के निवेशकों से राज्य के औद्योगिक विकास में साझेदार बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश को इस्पात उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने में छत्तीसगढ़ अग्रणी भूमिका निभाएगा। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर ने अपना पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसे किडनी पेयर ट्रांसप्लांट के रूप में भी जाना जाता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गुर्दे की विफलता से पीड़ित मरीज के पास अपना गुर्दा दान करने वाला एक इच्छुक व्यक्ति तो होता है, लेकिन यदि असंगत रक्त समूह या फिर HLA एंटीबॉडी की उपस्थिति के कारण वह गुर्दा दान करने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य असंगत जोड़ी के साथ गुर्दा देने वालों की अदला बदली करके भी प्रत्यारोपण कराया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद एम्स रायपुर नए संस्थानों के साथ ही छत्तीसगढ़ का भी पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जिसने इस जटिल जीवन रक्षक शल्य चिकित्सा को पूरा किया है। और पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में अगले 48 घंटों के दौरान ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं कल बस्तर संभाग के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण 26 अप्रैल से बस्तर संभाग में हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सभी आतंकियों की पहचान कर उन्हें सख्त सजा देगा। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने पंचायती राज दिवस पर आज अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का किया वर्चुअल शुभारंभ। मोर गांव मोर पानी महाअभियान की भी शुरुआत की। बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में कई माओवादियों के मारे जाने की खबर। 3 महिला माओवादियों के शव बरामद। और बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में अगले 48 घंटों के दौरान ग्रीष्म लहर चलने की संभावना। बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।